एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1908 में ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ गौहर जान की आवाज में राग भैरवी आधारित दादरा, जिसके बोल हैं, मेरे दिल को चुरा के किधर चले। क्या खास बात है इस 115 साल पुराने दादरे की। इसे सुनते हुए गौहर जान की किस दूरदर्शिता का एहसास होता है। इस दादरे के साथ फिल्मी गीत का कौन सा सामंजस्य अनुभव किया जा सकता है, जानिए गौहर जान और उनकी गाई इस रचना से जुड़ी कई दिलचस्प बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही है रिजवाना खान। श्रोता, 1994 की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया एक गीत आया था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। दिल चुरा कर चल देने वाली अदा पर तो वैसे इससे पहले भी कई गाने बन चुके थे और इसके बाद भी कुछ गीत बने, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता शायद इसी गीत के नसीब में लिखी थी। वैसे तो गीत पूर्णतः आधुनिक शैली का है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के जानकार बताते हैं कि इसमें राग भीम पलासी की हल्की छाया महसूस की जा सकती है। खैर, जो भी है दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं। जी नहीं, 50 या 60 के दशक में नहीं और ना ही 40 या 30 के दशक में। आप सोच रहे होंगे कि उससे भी पहले तो फिल्में ही नहीं थी, तो फिल्मी गीत कैसा। दरअसल आज हम आपको आज से करीब 115 साल पीछे लेकर जा रहे हैं, यानी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, यानी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के बनने से आपको आज से करीब 115 साल पीछे लेकर जा रहे हैं, यानी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के बनने के 86 साल पहले। वह दौर ऐसा था जब भारत में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर अधिकतर तवायफ की आवाज में संगीत के विभिन्न धाराओं की रचनाएं रिकॉर्ड हुआ करती थी। और ऐसा ही एक रिकॉर्ड में राग भैरवी आधारित एक दादरा गौहर जान की आवाज में सुनने को मिली, जिसके बोल थे, मेरे दिल को चुरा के इधर को चले। कहने का मतलब यह है कि हमारी फिल्मी गीतों में जो दिल चुरा कर चल देने वाली बात बार बार सुनने को मिला करती है, वह अंदाज तो बहुत पहले से ही उपशास्त्री रचनाओं में आ गया था। अब आप अगर हमसे यह पूछें कि वह कौन सा प्रथम फिल्मी गीत था जिसमें दिल चुरा कर चल देने की बात कही गई है, इस बारे में ठीक ठीक कह नहीं सकते हैं, लेकिन 1948 की फिल्म पपीहा रे में एक गीत था, चुरा के दिल ले गया। दोस्तों, अब तमाम गीतों को एक तरफ रखते हुए गौहर जान के गाए दादरे पर आ जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको बताते हैं गौहर जान की अजीब व करीब कहानी। गौहर जान 20वीं सदी के अंत में कोलकाता की एक बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार थी। यह अफसोस की बात है कि आज गौहर जान का नाम विस्मृत हो चुका है, लेकिन एक समय था जब वो भारत की सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। आपको याद होगा एक गीत 100 अफसाने की एक पिछली कड़ी में हमने मिस शशिमुखी के गाए भारत के प्रथम ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बात की थी। साल था 1902 और तारीख थी 8 नवंबर और उसके दो दिन बाद 10 तारीख को गौहर जान की आवाज पहली बार रिकॉर्ड हुई थी और वह एक मोहम्मदन गीत था। शशिमुखी और गौहर जान के अलावा भी इस रिकॉर्डिंग सेशन में कई और भी कलाकारों की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आगे चलकर गौहर जान को जो ख्याति मिली वह सर्वाधिक रही। उनकी आवाज और अंदाज का जादू कुछ यूं सर चढ़कर बोला कि उन्हें भारत का ग्रामोफोन गर्ल और रिकॉर्डिंग सुपरस्टार कहलाए जाने का सम्मान मिला। गौहर चांद अपनी कलात्मक क्षमताओं के साथ साथ अपनी लार्जर देन लाइफ लाइफ स्टाइल के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। गौहर चांद संगीत के साथ साथ नृत्य कला में भी पारंगत थी। उनका दौर वह दौर था जब कोठों पर तवायफों द्वारा संगीत और नृत्य प्रदर्शन को एक कला के रूप में देखा जाता था। भले ही अच्छे घर के लोग इस क्षेत्र से दूर दूर ही रहा करते थे, क्योंकि बदलती सामाजिक परिस्थितियों की वजह से तवायफों का पतन होने लगा। ऐसे में गौहर चांद इतनी बुद्धिमान थी कि उन्होंने नए माहौल में पनपने के लिए अपनी पेशेवर रणनीति में बदलाव किया। वैसे देखा जाए तो गौहर चांद का तवायफ बनना ही असामान्य था। उनका जन्म 1873 में पटना में एंजेलिना जोवार्ट के रूप में हुआ था। उनके पिता विलियम रॉबर्ट जोवार्ट एक अर्मेनियाई यहूदी थे जो आजमगढ़ में एक ड्राई आइस फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी माँ विक्टोरिया हेमिंग थी जो एक ब्रिटिश सैनिक की बेटी थी और जिनका जन्म सामान्य पालन पोषण भारत में हुआ था, और वे भारतीय संगीत और नृत्य अच्छी तरह जानती थी। एंजेलिना उनकी इकलौती संतान थी। एंजेलिना का बपतिस्मा आजमगढ़ के मेथोडिस्ट चर्च में हुआ था। दोस्तों, दुर्भाग्य से विलियम और विक्टोरिया का विवाह अधिक समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि विक्टोरिया का खुर्शीद नामक एक मुसलमान रईस दोस्त के साथ करीबी रिश्ता कायम हुआ, जिसके चलते सन 1879 में विलियम और विक्टोरिया का तलाक हो गया। तलाक के बाद खुर्शीद ने एंजेलिना से शादी नहीं की, बल्कि माँ बेटी को बनारस ले गए, क्योंकि वो विक्टोरिया की संगीत क्षमता को पहचानते थे और उन्हें लगा कि बनारस में उनकी कला सही मायने में विकसित हो सकेगी। बनारस पहुंचकर विक्टोरिया इस्लाम धर्म को अपनाते हुए मलिका जान बन गई और बेटी एंजेलिना को गौहर जान नाम दे दिया। नन्ही गौहर को बनारस में लोग अक्सर गौरा के नाम से बुलाया करते थे। वक्त गुजरता गया, मलिका जान एक मशहूर तवायफ गायिका और कथक नृत्यांगना के रूप में जानी गई। वो अब बड़ी मलिका जान बन चुकी थी, क्योंकि उस समय तीन और मलिका जान मशहूर थी, आगरा, मुल्क, पुखराज और चुलबुली की। दोस्तों, 1883 में मलिका जान बेटी गौहर जान को साथ लेकर कोलकाता वापस चली गई और खुद को नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में स्थापित किया, जो कोलकाता के पास मेतिया बुर्ज में बस गए थे। और 3 साल के भीतर मलिका जान ने 24 चितपुर रोड में खुद के लिए 40,000 रुपए की एक इमारत खरीद ली। यहीं पर युवती गौहर ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने पटियाला के काले खां, जो कालू उस्ताद नाम से मशहूर थे, और उस्ताद अली बख्श जनरल, जो पटियाला घराने के संस्थापक सदस्यों में से थे, से विशुद्ध और उपशास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी गायन तथा प्रसिद्ध कथक गुरु वृंदादीन महाराज से कथक सीखा। कलकत्ता के प्यारे साहेब और रामपुर के उस्ताद वजीर खान भी उनके गुरु रहे। गौहर जान ने सृजनबाई से ध्रुपद, धमार और चरणदास से बंगाली कीर्तन भी सीखा। यही नहीं, जल्द ही गौहर हमदम उपनाम से गजलें लिखना और उन्हें संगीतबद्ध करना भी शुरू कर दिया था, और वे रविंद्र संगीत में भी पारंगत हो गई। गौहर ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मात्र 14 वर्ष की आयु में सन 1887 में दरभंगा के महाराजा के दरबार में दिया था। महाराजा उनके प्रदर्शन से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गौहर को दरबारी संगीतकार व नर्तकी के रूप में नियुक्त कर दिया। गौहर जान ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी में निपुण हो गई। उनके गाए ख्याल इतने उल्लेखनीय थे कि संगीत विशारद भात खंडे ने उन्हें भारत की सबसे महान महिला ख्याल गायिका घोषित कर दिया। भारतीय संगीत के इतिहास का एक प्रमुख मील का पत्थर रहा 1902 में रिकॉर्डिंग की परंपरा का शुरू होना। इसी वर्ष से लेकर 1920 तक गौहर जान की गायी रचनाओं को कई ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनियों ने रिकॉर्ड्स पर जारी किए, जो उनके उपार्जन का एक और जरिया बन गया। गौहर जान कोठों, दरबारों, महफिलों की जान तो थी ही, अब रिकॉर्ड्स के जरिए भी उनकी आवाज देश भर में धूम मचाने लगी। उनका दर कुछ इस कदर बढ़ गया कि उन्हें प्रति रिकॉर्डिंग 3,000 रुपए का भुगतान किया जाता था, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ऐसा अनुमान है कि 1902 से 1920 तक उन्होंने 10 से अधिक भाषाओं में 600 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें हिंदुस्तानी, बांग्ला, अरबी और पाश्तो भाषाएं प्रमुख हैं। उन्हें ग्रामोफोन गर्ल और रिकॉर्डिंग स्टार की उपाधि यूं ही नहीं दी गई, यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जो उन्होंने यह भाप लिया था कि बहुत जल्द रिकॉर्डिंग उद्योग मनोरंजन जगत का एक अहम उद्योग बन जाएगा, इसलिए वे किसी भी रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गई बल्कि सबके लिए गाया और अच्छा मुनाफा कमाया। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गौहर जान ही थी जिन्होंने लंबी अवधि की शास्त्रीय और उपशास्त्रीय रचनाओं को बड़ी कुशलता से 3 मिनट के दायरे में बांधा। उन दिनों रिकॉर्डिंग की यही समय सीमा हुआ करती थी। यह वही प्रारूप था जो कई दशकों तक चला, बल्कि बोलती फिल्मों के शुरू होने पर यही प्रारूप फिल्मी गीतों को भी मिला। आगे चलकर लॉन्ग प्लेइंग या LP रिकॉर्ड्स के आने के बाद ही यह प्रारूप बदला, लेकिन गीतों का मूल स्वरूप वही रहा जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के पहले दौर के गायक गायिकाओं ने कायम किया था। अब बात करते हैं आज के गीत यानी मेरे दिल को चुरा के किधर को चले के संदर्भ में। उस जमाने में जहां अच्छे घरों के लोगों का गाना बजाना अच्छा नहीं माना जाता था और औरतों में केवल तवायफ ही गाया करती थी और वो भी पारंपरिक शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और धार्मिक रचनाएं, वह गौहर जान का मेरे दिल को चुरा के किधर को चले जैसा हल्के किस्म का गीत उस जमाने के लिहाज से काफी अशोभनीय और अनैतिक था। लेकिन जैसा कि अभी हमने गौहर जान की दूरदर्शिता का जिक्र किया, उनका गाया यह गीत इस बात की ओर संकेत था कि भविष्य में इसी प्रकार के हल्के फुल्के गाने लोकप्रिय होने वाले हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि हम सब जानते हैं। दोस्तों, गौहर जान दूसरी तवायफों से बहुत अलग थी। वो अत्यंत प्रतिभाशाली थी, जिस वजह से वो अपनी रचनाएं खुद ही लिखा करती थी और उन्हें संगीत पर भी खुद ही करती थी। इसलिए जहां पारंपरिक रचनाएं ही गा पाती थी, वही गौहर जान पारंपरिक रचनाओं के साथ साथ खुद आधुनिक शैली की रचना भी गाती थी, जिन्हें सुनकर लोग झूम उठते। आज के अंक में हम उनकी गायकी जिस रचना का जिक्र कर रहे हैं वह भी इसी श्रेणी में आता है। जरा इस दादरा के बोलों पर गौर करें। मुखड़े में वो गाती है, मेरे दिल को चुरा के किधर को चले, ए किधर को चले हो किधर को चले, मेरे दिल को चुरा के किधर को चले। पहले अंतरे में वो कहती है, जहाँ चुराया मेरा दिल मिला के नजर तुम्हें जाने ना दूंगी, चले हो किधर जरा आंखें मिला के तो देखो इधर, या तो बैठो या दिल को नहीं दो खबर, देखो ना छुपाओ बातें ना बनाओ गरवा लगाओ, जाते कहाँ मेरे दिल को चुरा के किधर को चले। दोस्तों, इन बोलों को सुनते हुए क्या आपको नहीं लगा कि जैसे आप किसी फिल्मी गीत के बोल सुन रहे हो? बस यही थी गौहर जान की दूरदर्शिता के फिल्म संगीत के शुरू होने के लगभग 2 दशक पहले ही वो ऐसे गाने बना रही थी जो आगे चलकर फिल्मी गीतों के रूप में गूंजी। और अगर आप इस दादरे को यूट्यूब पर सुने तो समझ पाएंगे कि किस दूरदर्शिता की बात हम कर रहे हैं। इन बोलों और इन्हें फेर बदल कर जाने समय समय पर कितने ही फिल्मी गीत हमारे फिल्मी गीतकारों ने लिखे हैं। गौहर जान का एक स्टाइल था कि वो अपने हर रिकॉर्ड के अंत में अंग्रेजी में अपना नाम कुछ यूं बताया करती थी, माई नेम इज गौहर जान। इस तरह की नाम घोषणा को सुनने का उनकी दमदार आवाज में इस तरह की नाम घोषणा को सुनने का भी एक अलग मजा है। इस दादरे के अंत में भी यह सुनाई देता है। यह परंपरा इसलिए स्थापित हुई थी ताकि उनके गाय गीत जब मुद्रण के लिए हैनोवर जर्मनी जाए तब गलती से किसी और कलाकार का नाम रिकॉर्ड लेबल पर छप न जाए, और इसलिए वो अंग्रेजी में बोलती थी। गौहर जान का गाया राग भैरवी में यह दादरा सन 1908 के अप्रैल महीने में कोलकाता में फ्रेडरिक विलियम गाइसबर्ग ने रिकॉर्ड किया था।
श्रोताओं, 1916 में HMV लेबल से ये रिकॉर्ड पुनः जारी हुआ था। दोस्तों, गौहर जान एक ऐसी कलाकार थी जिनकी बातों को हम एक एपिसोड में समेट नहीं सकते। 1916 में HMV लेबल से ये रिकॉर्ड पुनः जारी हुआ था। उनके गायन और जीवन शैली की तमाम बातें जो आज रह गई, फिर किसी दिन हम लेकर आएंगे उनके गाए किसी और गीत के बहाने। आपसे बस यही गुजारिश है कि अब से आप जब भी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का वो गीत सुने, एक बार गौहर खान का स्मरण करें जिन्होंने इसी तरह का गीत आज से 115 साल पहले ही रच डाला था। आज के इस अंक में सम्मिलित ऐतिहासिक बातें हमने प्राप्त की प्रसिद्ध इतिहासकार माइकल किनियर के ग्रामोफोन इतिहास के शोध कार्य से। अब आज का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।